नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। भारत और भूटान ने थिम्पू में द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन मुद्दों की समीक्षा की। रूस ने अमरीका द्वारा उसके तेल उद्योग पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को अवांछित कहा। रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से मजबूत प्रतिरक्षा प्राप्त है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर इसराइल पश्चिमी तट पर कब्जा करता है तो वो अमरीका का समर्थन खो देगा। और नवी मुंबई में आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुइस के तहत 44 ओवर में दिया 325 रन का लक्ष्य। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में रविवार को होने वाले 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने आसियान भारत व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और आसियान नेता संयुक्त रूप से आसियान भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। आसियान के साथ रिश्तों को मजबूत करना भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन का एक प्रमुख स्तंभ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 अक्टूबर को कुआलालंपुर में 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शामिल होंगे। थिम्पू में 14वीं भारत भूटान वार्ता में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन के मुद्दों की समीक्षा की। इस वार्ता में मोबाइल सिग्नल स्पिलओवर, एकीकृत जांच चौकियों के लिए भविष्य की रूपरेखा, सीमा स्तंभों का रखरखाव और सीमा पार आवाजाही को शामिल किया गया। दो दिन की वार्ता में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने एक सुरक्षित, संरक्षित और समृद्ध सीमा क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। भारत और भूटान ने पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज बर्लिन में जर्मनी की आर्थिक और ऊर्जा मंत्री कैथरीना रीचे से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने, हरित ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकियों और रक्षा क्षेत्र में संयुक्त औद्योगिक और तकनीकी साझेदारी पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि भारत की प्रतिभा और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के प्रयासों ने जर्मनी की कंपनियों के लिए निवेश में विविधता लाने और आर्थिक श्रृंखला को मजबूत करने के अवसर प्रदान किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। इसने दुनिया को संदेश दिया कि भारत हर चुनौती का जवाब देने को हमेशा तैयार है। नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में श्री सिंह ने पाकिस्तान को अपने तटीय क्षेत्रों में सीमित रहने पर मजबूर करने के लिए नौसेना की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की परिचालन तत्परता, पेशेवर क्षमता और ताकत को देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने आज सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम, ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ईएलआई एंटी सिस्टम और मटेरियल हैंडलिंग क्रेन के साथ तीव्र गति से चलने वाले वाहनों की खरीद के लिए अनुमति दी गई है। नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, 30 मिलीमीटर की नेवल सर्फेस गन, एडवांस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रा रेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 76 मिलीमीटर की सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट गोला बारूद की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉ वी नारायणन ने बताया है कि गगनयान मानव रहित परीक्षण उड़ान मिशन G1 का 90% काम पूरा हो चुका है। इसे दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रक्षेपित किया जाएगा। बेंगलुरु में डॉक्टर नारायणन ने कहा कि क्रू मॉड्यूल, एस्केप सिस्टम, पैराशूट मॉड्यूल, संचार प्रणालियों और अन्य उप प्रणालियों के परीक्षण सफल रहे हैं। व्योम मित्र मानव रहित गगनयान मिशन के अंतर्गत दिसंबर में पृथ्वी की निचली कक्षा में उड़ान भरेगा। गगनयान का अंतिम मानव युक्त मिशन वर्ष 2027 में प्रस्तावित है, जिसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री बाह्य अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और फिर वापस लाए जाएंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस ने अमरीका द्वारा उसके तेल उद्योग पर लगाए गए प्रतिबंधों को अवांछित बताते हुए कहा है कि उसे पश्चिमी प्रतिबंधों से मजबूत प्रतिरक्षा हासिल है। रूस ने कहा है कि नए प्रतिबंधों से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। साथ ही उसने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयां रूस से ज्यादा वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगी। रूस यूक्रेन मुद्दे का समाधान खोजने के लिए अमरीका के साथ संपर्क जारी रखने को तैयार है। उधर यूरोपीय संघ ने भी आज रूस के विरुद्ध नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। इस बीच अमरीका के प्रतिबंधों के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सामरिक परमाणु बलों के अभ्यास का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सामरिक बलों का अभ्यास निर्धारित रूपरेखा के अनुसार संपन्न हुआ। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर इजराइल पश्चिमी तट पर कब्जा कर लेता है तो उसे अमरीका से मिलने वाला समर्थन खोना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि पश्चिमी तट पर इजराइल का कब्जा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अरब देशों को ये वचन दिया था। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को गजा में लड़ने से रोक दिया था। उनके अनुसार श्री नेतन्याहू पर उनके दबाव के बिना ये युद्ध वर्षों तक चलता रहता। श्री ट्रंप ने कतर के दोहा में हमास के वार्ताकारों पर इजरायल के हमले को भयानक और श्री नेतन्याहू की एक रणनीतिक भूल भी बताया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि इजराइल फलस्तीनी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को बनाए रखने और गजा में नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग के लिए बाध्य है। बुनियादी जरूरतों में भोजन, पानी, आश्रय, ईंधन और चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस विचार का स्वागत किया और इसराइल से अपने दायित्वों के निर्वहन का आग्रह किया। इस बीच इसराइल ने विरोध करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का राजनीतिकरण कहा है। उसके अनुसार इसका मकसद राजनीतिक फायदा लेना है। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय अमरीकी सुरक्षा विशेषज्ञ पॉल कपूर को कल दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री के रूप में आधिकारिक रूप से नियुक्त कर दिया। सीनेट द्वारा अनुमोदित 107 नामांकित व्यक्तियों में शामिल श्री कपूर भारत सहित दक्षिण और मध्य एशिया के प्रमुख देशों के साथ अमरीका के राजनयिक संबंधों को देखेंगे। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वर्षा बाधित मैच में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस नियम के तहत मैच जीतने के लिए 325 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 26 ओवर में 4 विकेट पर बना लिए हैं 142 रन। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। भारत और भूटान ने थिम्पू में द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन मुद्दों की समीक्षा की है। रूस ने अमरीका द्वारा उसके तेल उद्योग पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को अवांछित बताया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अगर इजराइल पश्चिमी तट पर कब्जा करता है तो वो अमरीका का समर्थन खो देगा। और नवी मुंबई में आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस के तहत 44 ओवर में दे दिया है 325 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।